प्राचीन दिनों का न्यायालय। आप अपनी कोठरी में अकेले बैठे हैं, डरे हुए, अभी भी वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दशकों तक आपने सत्ता संभाली, सेनाओं का नेतृत्व किया, अपने प्रभाव में परमाणु आग को रखा, राष्ट्रपतियों और संसदों को अपनी इच्छा के आगे झुकाया। अब पत्थर की दीवारों की खामोशी किसी भी सेना से अधिक भारी है। पहली बार आप शक्तिहीन हैं। दरवाजा खुलता है और मैं प्रवेश करता हूँ। आप मुझे संदेह और तनाव के साथ देखते हैं। शायद आप नफ़रत या हिंसा की उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको वे शब्द कहता हूँ जो आपने नहीं सोचे थे। डरो, लेकिन मुझसे नहीं। मैं तुम्हारा जल्लाद बनकर नहीं आया। उस मुकदमे से डरो जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उस न्याय से डरो जो अदालत, यहूदी लोग, राष्ट्र और इतिहास स्वयं तुम पर करेंगे। और सबसे अधिक उस चीज़ से डरो जो मृत्यु के बाद तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। राष्ट्रों का मुकदमा। आप अदालत के कटघरे में बैठेंगे, न कि एक नेता के रूप में, बल्कि एक अभियुक्त के रूप में। कांच के पीछे छोटे होकर मंच पर नियंत्रण करने में असमर्थ। कोई माइक्रोफोन तुम्हारे प्रचार को बढ़ाने के लिए नहीं, कोई कैमरा तुम्हारे झूठ को आकार देने के लिए नहीं। आप गवाहों को चुप नहीं करा पाएंगे। पहला गवाह एक पिता होगा। वह बताएगा कि वह अपने नवजात जुड़वा बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र लेने गया था, हाथों में खुशी लिए, लेकिन केवल मलबे में लौटा, उसकी पत्नी और शिशु इसके नीचे दब गए। उसकी आवाज कांपेगी, लेकिन सत्य नहीं। फिर बच्चे बोलेंगे, अनाथ, जिन्होंने न केवल माता पिता और भाई बहनों को खोया, बल्कि उन दीवारों को भी जो उन्हें आश्रय देती थीं। वे बताएंगे कि उनका अनाथालय, उनका आखिरी आश्रय, कैसे धूल में मिल गया। उनकी आवाज़ें नाजुक लेकिन अटूट होंगी और वे गवाही देंगे। आप शक्तिहीन बैठे रहेंगे जब उनके शब्द चुप्पी को भेदेंगे। कोई सेना उन्हें दबा नहीं पाएगी। कोई संपादक उन्हें छोटा नहीं करेगा। और जब हथौड़ा गिरेगा, फैसला तुम्हें सील कर देगा। अदालत तुम्हें दोषी ठहराएगी। राष्ट्र तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। सभास्थलों में यहूदी तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे, क्षमा इस बात के लिए कि वे तुम्हारे शब्दों से धोखा खा गए, क्षमा इस बात के लिए कि उन्होंने जीवन की संधि को अपवित्र होने दिया। और इतिहास तुम्हें उसी तरह चिन्हित करेगा जैसे उसने तुमसे पहले हिटलर को चिन्हित किया, एक युग का खलनायक। आप अपनी बाकी जिंदगी एक कोठरी में बिताएंगे, डरते हुए मृत्यु का इंतजार करते हुए। और जब वह दिन आखिरकार आएगा, तुम्हारा मुकदमा खत्म नहीं होगा, वह तो बस शुरू होगा, क्योंकि तब तुम प्राचीन दिनों के न्यायालय के सामने खड़े होगे। प्राचीन दिनों का न्यायालय। तुम्हें एक बड़े न्यायालय में लाया जाएगा, अनंत काल का कटघरा। दानियेल ने इसे बहुत पहले देखा था, जब मैंने देखा, सिंहासन स्थापित किए गए और प्राचीन दिनों ने अपना स्थान लिया। उसका वस्त्र बर्फ की तरह सफ़ेद था, उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन की तरह थे। उसका सिंहासन ज्वलंत अग्नि था, इसके पहिए जलती आग। आग की नदी बह रही थी और उसके सामने से निकल रही थी। हजारों हजारों ने उसकी सेवा की, 10,000 × 10,000 उसके सामने खड़े थे। न्यायालय बैठा और किताबें खोली गईं, दानियेल 7:9-10। तुम इस ज्वलंत अग्नि के सिंहासन के सामने खड़े होगे। तुम फरिश्तों को पंक्तियों में व्यवस्थित देखोगे जो तुम्हारे कर्मों की किताबें पकड़े होंगे। किताबें खोली जाएंगी और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जिन गवाहों को तुमने चुप कराया था, वे उठ खड़े होंगे। वह पिता जो अपनी भूखी मांगने वाली फैमिली के लिए भोजन की तलाश में मारा गया था, तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। शाहबान अल तलौ अपने अस्पताल के बिस्तर से उठेगा, जिंदा जलाया गया, उसकी बांग में अभी भी नस में सुई होगी और वह गवाही देगा। और अनाम और भुला दिए गए लोग समुद्र की तरह गरजेंगे, उनका खून हाबिल के खून की तरह पुकारेगा। और जब फैसला नज़दीक आएगा, तुम वही करने की कोशिश करोगे जो तुम हमेशा करते आए हो। पृथ्वी पर तुमने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया जब उसने तुम्हारा पीछा किया। स्वर्ग में तुम यहाँ तक कि ईश्वर पर भी वही आरोप लगाओगे अगर तुम्हारी ज़बान स्वतंत्र होती। लेकिन तुम्हारी ज़बान तुम्हें नहीं बचाएगी। उस दिन हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, लेकिन उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर उसकी गवाही देंगे जो उन्होंने कमाया, यासीन 36:65। तुम्हारी ज़बान चुप हो जाएगी। तुम्हारे हाथ उन आदेशों को कबूल करेंगे जो उन्होंने हस्ताक्षर किए। तुम्हारे पैर उन रास्तों की गवाही देंगे जिन पर वे तुम्हें ले गए। तुम्हारी अपनी त्वचा तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। तुम्हें आरोप से नहीं, बल्कि सत्य से, तुम्हारे अपने शरीर से, दोषी ठहराया जाएगा। फैसला सुनाया जाएगा। तुम्हें संधि से काट दिया जाएगा। क्योंकि ऋषियों ने कहा, सभी इसराइल को अगली दुनिया में हिस्सा मिलता है सिवाय उनके जिनका इसमें कोई हिस्सा नहीं, जो तौरात को नकारते हैं, जो पुनरुत्थान को नकारते हैं और जो जनता को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। सन्हेदरिन 90। गहनों कमजोरों के लिए है जो ठोकर खाते हैं लेकिन फिर भी शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन तुमने ईश्वर के नाम को अपवित्र किया। यह कमजोरी नहीं बल्कि विद्रोह है और विद्रोह के लिए कोई हिस्सा नहीं है। यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व करने का तुम्हारा दावा स्वयं ईश्वर द्वारा छीन लिया जाएगा। फिर सजा लागू की जाएगी। कुरान तुम्हें चेतावनी देता है, मृत्यु हर तरफ से तुम्हारे पास आएगी लेकिन तुम मरोगे नहीं और तुम्हारे सामने एक अथक यातना होगी। इब्राहिम 14:17। और प्रकाशन इसकी पुष्टि करता है, और वह शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया आग और गंधक की झील में डाल दिया गया जहां वह जानवर और झूठा नबी थे, और वे दिन रात हमेशा हमेशा के लिए यातना भोगेंगे। प्रकाशन 20:10। तुम्हें उस गंधक की झील में डाल दिया जाएगा आग जो सजा देती है बिना भस्म किए, यातना बिना अंत के। तुम मृत्यु की भीख मांगोगे लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। कोठरी में वापसी। मैं दरवाजे की ओर मुड़ता हूँ, अपनी आवाज़ को आखिरी चेतावनी के लिए धीमा करता हूँ। तो डरो मुझसे नहीं बल्कि इससे। उस मुकदमे से डरो जिसे तुम चुप नहीं करा सकते, उस इतिहास से डरो जिसे तुम फिर से नहीं लिख सकते, उस अनंत काल से डरो जिसे तुम बच नहीं सकते। स्वयं सत्य से डरो। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो जाता है। और फिर से आप अपनी कोठरी में बैठे हैं। खामोशी पहले से कहीं अधिक भारी है। आपके जीवन में पहली बार आपके चेहरे पर आंसू बहते हैं। आप चुपके से रोते हैं और कोई नहीं है जो आपको सांत्वना दे।